परिवार ही सब कुछ है। दुनिया भर में अब उनके साथ जुड़ना थोड़ा आसान हो गया है। अब जब आप सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर भेजते हैं तो विदेश में आपके प्यारे इसे उसी दिन अपने पास की मनीग्राम लोकेशन से नकद में ले सकते हैं, और ये सब बिना किसी ट्रांसफर फी के, ताकि आप अपने प्यारों को भेज सकें और ज्यादा। उनकी मदद करने का यही सही तरीका है। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ परिवार कभी भी दूर नहीं। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू हैं। cibc.com/cashpickup पर जाएं।
हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका प्रोग्राम लेके वीकेंड विद आसिम अली। और आप हमारा जो प्रोग्राम सुनते हैं हर हफ्ते सैटरडे को 4 बजे से 5 बजे तक, तो आपको पता है हमारा प्रोग्राम जो चलता है वो चलता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। और हम पूरे हफ्ते का रिव्यू आपको देते हैं कि इस पूरे हफ्ते में पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो अभी जो हो रहा है पाकिस्तान में इस हफ्ते, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे जो हैं वो स्पॉन्सर्स के बारे में। ये प्रोग्राम जो स्पॉन्सर्स किया है वो है इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज, वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन। और इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज जो हैं वो एक सिक्योरिटी फर्म है, और ये जो फर्म है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये सिक्योरिटी देते हैं तो ये आज के दौर में, जिसे हम कहें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और जब आप इनसे अपनी बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अपनी सिक्योरिटी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोई भी किसी भी किस्म की सिक्योरिटी आपको चाहिए हो, कमर्शियल चाहिए हो, कॉर्पोरेट सर्विस चाहिए हो, रिहायशी सिक्योरिटी हो, वेयर हाउस हो, सर्विस सेंटर हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, या कंस्ट्रक्शन साइट और ट्रांसपोर्टेशन यार्ड भी हो, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे सिक्योरिटी ले सकते हैं। क्योंकि जब ये आपको सिक्योरिटी देंगे तो आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आएगा इनके साथ काम करने का. क्यों? क्योंकि रेट बड़े अच्छे हैं और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. तो इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज के लिए कॉल कीजिए 647-987-0002. मैं फिर आपको नंबर बता रहा हूँ इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज का, 647-987-0002, www.irfi.ca. और अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड बनना है तो वो भी अब बहुत ही आसान है, उसमें भी अब आपको मुश्किलें नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज आपको सिक्योरिटी की जॉब भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ आपको लाइसेंस, अगर आपके पास नहीं है तो वो लाइसेंस भी आपको करवाएंगे. और जब आप इनके साथ काम करेंगे तो आपको प्राइस भी बड़े अच्छे मिलेंगे. तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ट्रेनिंग की आप डेट बुक करवा सकते हैं इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज से और फिर आगे कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं. तो अब ये बहाना तो नहीं चलेगा कि जॉब नहीं है या जॉब मिल नहीं रही है. तो आप इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं 647-987-0002. मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप कॉल कर सकते हैं 647-987-0002. और शहजाद अली खान हमारे पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़े एक्टर हैं, वो भी हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे. तो अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप हमें देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम बाद हम आपको देख रहे हैं कि आप हमें, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. थैंक यू. और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं. तो आप कॉल कर सकते हैं इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज को 647-987-0002, www.irfi.ca. इसके बाद हमारे पास जो है वो है वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन. वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन जो, वो शादी हो, बर्थडे हो या कोई भी इवेंट हो, वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन सुनहरी यादों को महफूज करता है और वो वीडियोग्राफी हो या फोटोग्राफी हो, वो आपके लिए हमतन लाइक सर्विसेज के लिए हाजिर खिदमत है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है. और सबसे मज़े की बात यह कि वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन जो है वो आपकी शादी की जो है वीडियोग्राफी जो है वो ये नहीं कहते कि शादी की वीडियो बना रहे हैं, बल्कि वो आपकी पूरी शादी को डायरेक्ट करेंगे. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं. अगर आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको अपना बताएंगे कि आजकल वो किस तरह से वीडियो भी डायरेक्ट कर रहे हैं शादी की, और वो बिल्कुल ड्रामाटाइज या फिल्म स्टाइल की वीडियो बना के आपको दे रहे हैं. तो अगर आपने अपनी किसी भी किस्म की वीडियो बनानी है, चाहे वो बर्थडे हो, शादी हो या किसी भी किस्म की, तो वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन को याद रखिए. कॉल कीजिए 647-745-4104. अगेन मैं आपको नंबर दे रहा हूँ. मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनाना हो या एक्टर मॉडल बनना हो तो भी आप अपनी पिक्चर्स बनवाने के लिए, पोर्टफोलियो बनवाने के लिए कॉल कीजिए वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन को 647-745-4104. सोशल मीडिया टीवी कमर्शियल बनाने हो तो भी कॉल कीजिए. चर्च, मंदिर या मस्जिद की फंडरेज कंपेन चलानी हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं 647-745-4104. और हमारे स्टूडियो का जो नंबर है वो आपको पता है, हमारे स्टूडियो का नंबर है 416-620-1778. पर फिर मैं दोबारा आपको नंबर बता रहा हूँ 416-620-1778. अभी हम आपकी 5 मिनट बाद कॉल इसलिए लेंगे, 5-10 मिनट बाद इसलिए कॉल लेंगे, क्योंकि अभी हम सबसे पहले रिव्यू देंगे आपको पूरे हफ्ते का, ताकि आपके पास कुछ सवाल होंगे, कुछ आपने कहना होगा तो फिर आप हमारे पास लाइव आइएगा और कहिएगा जो आपको कहना है. बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, आपको जो भी कहना होगा आप यहाँ कह सकते हैं. तो पहली जो पूरे हफ्ते की ये रही है कि इमरान खान साहब, अब फिर सब लोग बोलेंगे इमरान खान भाई, पूरे हफ्ते इमरान खान के अलावा कुछ होता ही नहीं टीवी पे, क्या करें? हम तो न्यूज़ देख देख के थक गए कि कुछ और भी मिल जाए, लेकिन हमने हमेशा, अब मैं टोपी इसलिए पहन रहा हूँ कि इमरान खान पर बात कर रहा हूँ, अभी फायर होने वाले बहुत सारे पीटीआई के लोग जो है ना मुझे कहने वाले हैं. एनीवे, वो भी हमारे भाई हैं, उनके अपने ओपिनियन है, तो मैं कभी भी उनको ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं, उनके अपने ओपिनियन है. बहरहाल, इमरान खान साहब ने कहा था कि वो GIT में नहीं जाएंगे और उन्होंने कहा था कि मैं, मुझ पर जो केस बनाया गया गलत है, और जलसों में उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता. लेकिन फिर अचानक से या तो ऊपर से ऑर्डर हुआ, किसी ने कहा या कुछ हुआ कि वो GIT में गए और सारे सवालों के जवाब भी दिए. अब क्या हुआ ये पीछे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि असल में हुआ क्या है जिसकी वजह से वो GIT में भी गए और उसके बाद फिर शहबाज गिल को भी रिहाई मिल गई है, उनको अथर मनल्ला साहब ने जमानत पे रिहा कर दिया और कहा कि अगली दफा जब आप आएंगे तो फिर आप प्रूफ के साथ आइए और ये केस अब चलता रहेगा। ठीक है, उन्होंने बहुत गलत बातें की हैं, लेकिन जमानत पे रिहाई उनकी, और जमानत पे रिहा होने के बाद अगले ही दिन वो किसी टॉक शो में बैठे और फिर उन्होंने वही सारी बातें की जिसपे कहा ही जा रहा है कि लगता है एक दफा फिर शहबाज गिल दोबारा अंदर हो जाएंगे। मतलब वो जो उनकी एक आदत है बदतमीजी करने की वो है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज ये कि इमरान खान के जलसे से खिताब और सारे कारकुनों को और सब लोगों को कहा है कि तैयार रहें, कभी भी कॉल दे सकते हैं। सितंबर के अंदर ही वो कॉल दे रहे हैं कि धरना देना है इस्लामाबाद के अंदर, ताकि जब धरना देंगे तो फिर शायद हुकूमत इलेक्शन करा लेगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी यह है कि इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होंगे, इमरान खान साहब जितनी बातें कर लें, जितने धरने दे दें, ये हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चारसद्दा में इमरान खान साहब सैलाब जदगान के पास गए तो वहां पे उनके खिलाफ एहतजाज किया उन्होंने और कहा कि आप आ रहे हैं, अब आ रहे हैं जब हम सब लुट चुके हैं और कोई इमदाद नहीं, कुछ नहीं, और आप अब आपको जो है वो चारसद्दा याद आया। बहरहाल वहां उनके खिलाफ एहतजाज किया गया। शहबाज शरीफ जो कॉन्फ्रेंस में गए थे, शंघाई कॉन्फ्रेंस पर, उसमें शिरकत उन्होंने की और बहुत ही जबरदस्त उनका विजिट रहा। हालांकि उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा, ये जो पीटीआई के, मैं कहता हूं वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो लौंडे लपाड़े जो हमारे कहते हैं कुछ लोग उनको, ये बड़ा उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि सबसे आखिर में उनको खिलाया, ये किया हो गया, बट दिस इज नॉट फेयर। आप ये भी देखिए, जब आप वीडियो देखेंगे सबसे फ्रंट पे शहबाज शरीफ साहब चल रहे, तो पीछे सारे उनके वो लोग चल रहे थे जो बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान थे, जैसे प्यूटन थे, तैयब अर्दगान थे। लेकिन ये बातें करने की नहीं है, बिल्कुल बेकार बातें। उनका दौरा बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहां शिरकत की लोगों से बहुत, और चाइना और रशिया से भी मामलात तय पा गए हैं और उन दोनों मुल्कों ने शहबाज शरीफ साहब को अपने मुल्क में आने की दावत दी है, जो कि नवंबर में ये लोग वहां जा रहे हैं दोनों कंट्रीज में, और कुछ माहदे जो वर्बली तय हो चुके हैं अब नवंबर के अंदर फाइनली तय हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में सिर्फ इसलिए आए कि उन्होंने अपने केसेस खत्म करने थे, जो कि उन्होंने एक तरमीम लेकर आए हैं नैब में, और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है कि उन्होंने अपने केसेस खत्म किए हैं, जिसमें रमजान शुगर मिल का भी एक केस है जो कि अब अदालत ने कहा है कि वो हमारे पास इसलिए नहीं आएगा, जो नई तरमीम हुई है उस हिसाब से उसको हम नहीं सुन सकते। मगर सर, सवाल यहां पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत जो ली गई है वो क्यों ली गई है? क्या वो भी केसेस खत्म करने के लिए? जी हां, पंजाब हुकूमत भी आने के बाद फराह गोगी, शीरी मजारी और जितने पीटीआई के लोग, उन सबके केसेस को खत्म कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि ये सियासी हैं, उनको बिल्कुल यकसर से खत्म कर दिया गया है, जिसमें फराह गोगी भी हैं, शीरी मजारी भी हैं, अपने बुजदार साहब भी हैं और मलिक रियाज साहब भी, इन सारे केसेस को खत्म कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि बराबरी का मुकाबला चल रहा है, गवर्नमेंट में आज लेना है ताकि अपने अपने केसेस खत्म करें। पंजाब की गवर्नमेंट खत्म होने जा रही है या नहीं, ये तो इस महीने के एंड तक पता चल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शेख रशीद साहब है उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये दोनों भाई एक होने जा रहे हैं, इनके दरमियान मसालेहत हो जाएगी, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही। तो अब ये समझ में नहीं आता, क्या चौधरी शुजात साहब मान जाएंगे इमरान खान के पास आने के लिए, चौधरी परवेज इलाही मान जाएंगे इमरान खान से अलग होने के लिए? ये अब देखना है कि होगा क्या। बिजली के बिल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, तो भैया फिर ये समझिए कि अभी तो बिजली का एक और पहाड़ टूटने वाला है। जितने भी दुख या तकलीफ है वो बेचारे गरीबों के साथ ही क्यों है? बिजली के बिल से किसी पॉलिटिशियन को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि उन्होंने तो बिजली का बिल देना ही नहीं, और अगर देना भी है तो बहुत पैसा है। जब 10 करोड़ रुपए लगा के वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फिर बिजली का बिल तो बड़े आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 के 50 तो निकालेंगे। जिस दिन मैं ये समझता हूं जब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे लगाना बंद हो जाएंगे ना, तो शायद पॉलिटिशियन पैसे खाना भी बंद हो जाए, क्योंकि लगाएंगे नहीं तो। लेकिन जब वो 10 करोड़ रुपए लगाते हैं तो सबसे पहले वो 10 करोड़ निकालते हैं, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट भी निकालते हैं, तो ये तो एक बिजनेस हो गया गवर्नमेंट में आना, मिनिस्टर बनना। और फंसता कौन है? बेचारा गरीब। बिजली के बिल कौन देगा? बेचारा गरीब, उसकी कोई नहीं सुनेगा। फवाद चौधरी ने अभी इल्जाम लगाया नया नया कि फहद मलिक को गवर्नमेंट में जॉब दी गई और तलत हुसैन को जो है क्रिकेट ग्राउंड दे दिया गया, जिस पर तलत हुसैन साहब जो कि सहाफी हैं उन्होंने कहा कि पिछली दफा की तरह फिर फवाद चौधरी को शायद پرابلم ہو گئی ہے, انہوں نے پھر ہمیں ہم پہ الزام لگانا شروع کر دیا, جس کے لیے وہ اب کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات کی جو سازش ہے جو فواد چودھری اینڈ پی ٹی آئی گروپ کرتی ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ رہا اس پورے ہفتے میں وہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب. فیصل واڈا صاحب ایک پروگرام میں آئے, انہوں نے اس پروگرام میں آ کے باقاعدہ طور پہ بہت واضح طور پہ الزام لگایا, بلکہ الزام نہیں لگایا, یہ کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خان صاحب کے رائٹ اور لیفٹ اور عریب قریب میں جو چار لوگ ہیں وہ ان کے آستین کے سانپ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے دور کیا جائے, ان کو نااہل کیا جائے اور ان کی سیٹ پہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بیٹھے, ان چاروں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جس میں نام نہ بھی لیا تو انہوں نے جو واضح اشارے دیے اس میں فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, اسد عمر. کیونکہ آپ ہمیشہ نوٹ کیجئے جب بھی یہ بات آتی ہے کہ جی مائنس ون کیا جا رہا ہے تو کوئی کہتا کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے اپنے اندر سے, لاسٹ ٹائم بھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا اور یہ کہا گیا, کس نے کہا کیسے کہا, کوئی اس کے ثبوت نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, عمران خان جے آئی ٹی میں کیوں گئے, شہباز گل کو رہائی کیوں ملی, اس کے بارے میں روف کلاسرا مالک صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات طے پا گئے ہیں, مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو تعلقات کی بات یا جو پیچ اپ ہونے کی بات ہو رہی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی, یہ بھی صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے بات. کیوں, یا پھر یہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, لیکن اصل میں عمران خان پہ اب کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی واضح یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا رخ یا اپنی چیزیں چینج کر سکتے ہیں. بٹ ابھی جو ہو رہا ہے وہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. کیا عمران خان کو اقتدار مل جائے گا بہت جلد؟ کیا الیکشن اس سال ہو جائیں گے جو کہ نظر نہیں آ رہے؟ کیا عمران خان کال دیں گے اپنے جو سب کو تیار رہنے کا کہا ہے تو ایسا کچھ وہ کر جائیں گے کہ پریشر دے دیں اور پھر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کرا لے؟ جبکہ گورنمنٹ بہت زیادہ اسٹیک ہوئی ہوئی ہے کہ جب تک ہم معیشت کو بہتر نہیں کر لیتے جب تک ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی معیشت کو خراب کر دیا, آئے الیکشن میں, الیکشن میں پی ٹی آئی کے لوگ. تو ان کے لیے پھر یہ بات انہوں نے کہی ہے مریم نے کہ معیشت آپ نے خراب کی, آپ نے معیشت کو بہت زیادہ برا کر کے جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے اور پھر ان کی خلاف ورزیاں کی, اس سے آپ نے معیشت خراب کی. اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاپولر ہم ہو گئے. واقعی ابھی عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں تو اب ہم الیکشن کرائیں؟ نہیں, یہ لوگ بھی واپس اپنی پوزیشن پہ آنا چاہ رہے ہیں, پھر الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا گروپ ہے پی ٹی آئی کا, وہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سیلاب زدیان کی بھی مدد مت کیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پیسے وہاں تک نہیں پہنچیں گے. اور یہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بہت بڑے بڑے جو فنڈ ریلیف یا این جی اوز ہیں ادھر بھی انہوں نے پوسٹیں ڈالی ہیں جو کہ بہت بری ہیں. آپ کسی کا نہیں, صرف پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ یہی وہ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے لیے بھی خط لکھا, وہی ساری چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں. پاکستان کے اگینسٹ جانا بالکل ٹھیک نہیں ہے. پاکستان ہے تو سب ہیں, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ پلیز خدا را کوشش کیجیے, جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں یا جو چیزیں اچھی نہیں ہو رہی ہیں آپ ان کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی پاکستان جو ہے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیلاب کی وجہ سے جو پاکستان میں تباہی آئی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جو بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور 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 صحیح, مطلب ان کو کھانا پہنچائے, چیزیں دیں. اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت ہی نااہلی نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے میں صرف یہ کہوں گا کہ کب جاگو گے سندھ گورنمنٹ والوں, کب جاگو گے؟ پتہ نہیں کس طرح, مطلب کراچی سے لے کے پورے سندھ کے اندر آپ جا کے دیکھیں پانی اتنا زیادہ کھڑا ہوا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہ بار بار ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھیج دیا, ہم نے کر دیا, لیکن وہاں جا کے جو حامد میر صاحب گئے, کافی لوگ گئے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, وہ بول رہے ہیں ہمارے پاس یہاں کوئی آ ہی نہیں رہا. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں, خدا را کچھ کیجئے. اگر آپ اقتدار میں ہیں تو کچھ کیجئے, کیونکہ آپ کے پاس اگر پاور ہے تو سب سے زیادہ سوال بھی آپ سے ہی ہوں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہی سوال کرے گا کہ آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا پورے ہفتے کا ہم نے بھی آپ کو بتایا, اور دو چار خبریں, لیکن ہم آپ کو نمبر دوبارہ دے رہے ہیں 416-620-1014, 1778 पे आप कॉल करना चाहें तो हमें कॉल कीजिए, और डिस्कस करना चाहें तो जरूर डिस्कस कीजिए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आ रहा है, क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी चेंज आ रहा है अल्लाह करे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। और अगर इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए तो मैं कहता हूं कल नहीं आज आ जाएं। अच्छा, एक और खबर इसमें यह है कि इस बात को कि इमरान खान साहब जो है वो अमेरिकन कुछ लोगों से मिले, जिनसे मिलने के बाद जब फवाद चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। असद साहब ने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बयानियां ये रखा था कि अमेरिका सारी साजिश के पीछे, लेकिन अब सुनने में यही आया है कि अब इमरान खान साहब जो है अमेरिका के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मतलब वो चाह ही रहे हैं कि अमेरिका से वो दोबारा वो हो जाएं, तो उनके लोगों से मिल रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ ये मेरी फ्रेंड भी हैं जिनसे मैं मिला हूँ, नाम मैं इनका असल में भूल गया हूँ, मैं अभी गूगल करके सर्च करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं मिला हूँ इनसे और ये मेरी फ्रेंड भी हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये वही खातून हैं जो CIA में हैं। और दूसरा, जो इमरान खान साहब ने, जो CIA की फॉर्मर थी, और इमरान खान साहब ने जो अपनी अमेरिका में जो PR कंपनी ली है उसके बारे में भी ये पता चला है। अभी कंफर्म बात इसलिए कहूँगा कि ये सोशल मीडिया की बात नहीं, ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविजन है, वहाँ पे बात आई है कि जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब ने अमेरिका में PR कंपनी ली है वो भी एंटी हमारे जो एटम बम थे उनके अगेंस्ट उन्होंने भी काफ़ी प्रोपोगंडा किया था पूरी दुनिया के अंदर। तो आई डोंट नो, अब ये इमरान खान साहब को तो पता नहीं है, या फिर इमरान खान साहब को मरवाया जा रहा है, जानबूझ के ऐसी जगहों पे लेके जाके भेजा जा रहा है जहां से इमरान खान साहब का पूरा पॉलिटिकल करियर को ही ख़त्म किया जाए। तो फिर तो ये कहेंगे कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक साजिश के तहत जो इनके सराउंडिंग में लोग हैं उनको ख़राब कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द पॉलिटिक्स से अलग हो जाए। तो मैं फिर आपको नंबर रिपीट कर रहा हूँ, कॉल कर सकते हैं आप, कॉल कीजिए 416-620-1778 पर। तो ये सारी न्यूज़ मैंने आपको बताई, चलें फिर जब तक कॉल आप नहीं करते तो हम इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है। शहबाज गिल की रिहाई मिलना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर उन पे केस चलना है तो ज़रूरी नहीं कि उनको जेल में रखा जाए, लेकिन जब वो जेल से निकले तो उनका इस्तकबाल करने के लिए कोई भी नहीं था, ये बड़ा अजीब एक लगा मुझे, क्योंकि उनको लेने भी नहीं आया। इमरान खान साहब ने भी परसों उनको कॉल करके उनकी तबीयत पूछी है, अदरवाइज उनको कोई लेने भी नहीं आया। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं तैयार रहना और इस्लामाबाद को बंद कर देंगे और हम ये कर देंगे, ये सब क्या है, क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक और न्यूज़ आपको बताता हूँ बहुत अच्छी, वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। और लास्ट टाइम जब उन्होंने लाहौर में डेरे डाले थे तो आपको पता है पंजाब हुकूमत जो है वो हमजा शहबाज के पास आ गई थी, और उसमें उन्होंने चौधरी बरादरान को और इन सबको शामिल करने की कोशिश की थी, जिसमें एक बहुत बड़ा, लास्ट टाइम जब अभी डेरे डाले थे तो इन्होंने पंजाब हुकूमत बनाई थी इमरान खान ने, लेकिन दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया था। तो अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। एक इतला यह भी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे जो हैं वो दोनों, मोनस इलाही, ये दोनों अपना एक 30 या 35 लोगों का MNA का और MPA का अपना एक अलग से ग्रुप, प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनका ख्याल ये कि जब इलेक्शन में जाया जाए तो इनकी सीटें और बढ़ जाएं और ये इमरान खान से हट के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी ये मीडिया पे रिपोर्ट आई है, टेलीविजन पे आई है। दूसरा यह है कि परवेज इलाही और मोनस इलाही अब किस डगर में कहाँ देख रहे हैं ये अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि शायद अगर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात मिल जाते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि जो सीटें इन्होंने इमरान खान को दी हैं वो सीटें लेके ये नून लीग में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनका कोई दीन ईमान है नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से उन्होंने अपने आप को कैश कराना है, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। चले चलते हैं हम एक गाने की तरफ और आपको एक गाना सुनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम भी रेस्ट करते हैं, गाना सुनते हैं। तो आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल कीजिए 416-620-1778 पर। और मुझे पता है अभी कॉल जो है ना बाद में आना शुरू होंगी, फिर टाइम कम रह जाएगा, फिर लोग बोलेंगे हाँ हमने इतनी कॉलें की हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 4 बजे से प्रोग्राम सुनिए और जब दिल चाहे आपका जब कॉल कीजिए। चले तो गाना सुनाएं। हेलो 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 जी, हमारे पास एक कॉलर आ गए तो हमने कहा चलो गाना, कॉल भी ड्रॉप हो गई है। चले तो आप दोबारा कॉल कर लें, हम जब तक दिल दिल पाकिस्तान लगाते हैं, दिल दिल पाकिस्तान, क्योंकि मैं सारे गाने आपको बता रहा पाकिस्तान से रिलेटेड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे से अलग होने से बेहतर है कि एक हो जाएं, तो इसलिए मैं सिर्फ मिली नगमों पर ही कनात करता हूँ, वही सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो सुनिए दिल दिल पाकिस्तान। जी तो हमारे पास कॉल फिर आ गई, कॉल जब आती है तो हम फिर ड्रॉप इसलिए कर देते ताकि लोग जल्द अज जल्द हमसे बात कर सके, बोल सके। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, क्या हाल है? खैरियत?
बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं, क्या हाल है, क्या हो रहा है सर?
बस अल्लाह का आपको शुक्र है, थाना आपकी दुआ चाहिए जो आप देते नहीं हो आप।
और बताइए कुछ कहना चाहते हैं? बोल के
अल्लाह का शुक्र है भाई। यार मसला ये गाने तो आपने शुरू में लगाया था पीटीए के जलसे में, लगता है जबरदस्त गाना लगाया था आपने।
आसिम
भाई यार चक्कर क्या है देखो, सीधी सीधी बात ये है, ये हुकूमत जो आई है इसका ये था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, महंगाई के खिलाफ आए हुआ है।
बिल्कुल सही है।
देखिए यार जो चीज एक डॉलर की थी, जो एक रुपए की थी यार, वो तो उन्होंने समझो उसको 10 गुना कर दिया, 100 रुपए की हो गई।
ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात पर तो मैं भी एग्री कर रहा
हूं। क्योंकि जितने भी लोग आए थे, जितने भी इनके साथ जो इत्तेहादी हैं, यही आए थे ना, इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, वो कर दिया, इनका मोटिव तो यही था ना, लेकिन इन लोगों ने तो हद कर दिया। इन लोगों ने तो जो गरीब बेचारा सांस भी ले रहा था वो सांस भी उन्होंने छीन।
लेकिन एक बार बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना भाई?
नहीं मैं आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानता।
चले थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप ये देखिए, 6 महीने में चैन से बैठने भी नहीं दिया, हुकूमत करने भी नहीं दी इमरान खान ने, एक दिन चैन से
कहा।
अब आप देखे ना, अब आप ये बात थी ना, आपने बीच में बोल दिया। देखिए पता है मसला क्या, 6 महीने के अंदर इमरान खान ने जितने जलसे और जितनी चीजें की है ना, हर दिन कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी। आप पूरे 3.5 साल निकाल लेना, इतने जलसे इतनी रैलियां नहीं निकली हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं किसी के फेवर में बात नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूं। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो देखें सब भाग जाएंगे। जितने बिजनेस कम्युनिटी होती है ना, वो चाहती है कि अगर स्टेबिलिटी होगी तो हम उस कंट्री में अपना सरमाया लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब कल की ये रिपोर्ट है जो है, अब इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब देखें कितनी होती कितनी नहीं होती, जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है, चाइना है, इवन टर्की ने अभी कुछ माहिदा किया है कराची के लिए, पाकिस्तान सिंध के लिए, फिर रशिया ने कहा है कि हम गैस दे सकते हैं, वो अब जा रहे हैं नवंबर में माहिदा करने। स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है पॉलिटिकल
स्टेबिलिटी। आप ही की बात को आगे लेके चलते हैं, इमरान खान के दौर में देखो ना, टेक्सटाइल मिले जो बंद पड़ी हुई थी उसने टेक्सटाइल मिले खुलवाई, मुल्क को एक सही सिम की तरफ लेके जा रहा था, उसको भी एंड में यही करा ना, उसको बेचारे को निकाल।
इमरान खान भी ये करेगा
यार? तो भाई ये मैं करे यार आसिम भाई, ये तो आपको पता ही है, बरादरन 35 साल से इस मुल्क पे काबिज होके बैठे हैं, इन्होंने क्या कर दिया आज तक, जो भी कर लेंगे ये लोग।
बात ये नहीं है, देखो बात 3.5 साल इमरान खान साहब के पास भी थे ना, अभी भी देखे ना, आज
एक आज इतना बड़ा मलबा को वो निकाल लीजिए,
अरे 2% तो सुन तो लीजिए। अभी इन्होंने कहा कल के जलसे में कि जी शहबाज शरीफ इसलिए आए थे हुकूमत में क्योंकि उन्होंने तरमीम करनी थी और उन्होंने अपने केसेस निकालने। बिल्कुल सही कहा, हकीकत है ना, कैसे बोले ना आप, हकीकत है। अब ये भी हकीकत सुनिए कि पंजाब की गवर्नमेंट के बाद फर्क होगी, शीरी मजारी इन सब केसेस भी खत्म हो गए, तो फिर
गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, जो बात गलत है वो
यही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिसका जहाँ दौर चल रहा है ना, वो वहाँ वही काम कर रहा है। अभी कल जो सारे केसेस
देख लो ना, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल कितने अरसे से पीपल्स पार्टी बैठी हुई है,
बर्बाद
नहीं करने दिया। और हमारे जो वो एमके वो आई थी, उसने तो आगे और बड़ा फर्क कर दिया, वो जो घर के रखवाले आए थे उन्होंने घर को और लूट के ले गए वो लोग।
भाई प्रॉब्लम यही है ना सिंध में, तो खैर अभी मैं सिंध की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास यार कॉलर बहुत ज्यादा है, तो अगर आप
है ना, ओके,
ओके, यार बुरा नहीं मानना, ठीक है, थैंक यू अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम
जी सर, नाम बताएंगे अपना?
नाम को भाई छोड़े, आपका प्रोग्राम अच्छा, कॉल कर लेते हैं
जी। बोले बोले सर, बोलिए
सर। मैं कहता हूँ कि ये जो जुल्म किया ना मराणा और उसके हादियों ने
जी जी,
सैलाब जदगान के बारे में भी इनको तरस नहीं आया, ठीक है, इतनी बड़ी मौत हो जाना, इतना बड़ा नुकसान हो जाना, ये सियासत तो चलती रहती है, ये तो मतलब ये भी चोर साबित हो गया ना, ठीक है।
फर्ज जुर्म होने वाली 22 तारीख को इन पे फर्ज जुर्म आयद हो गया, पता नहीं क्या होगी, ये नहीं पता।
वो टीवी पे बैठ के मान गया कि मैंने वो
तोशा खाना, हाँ वो तो तोशा खाना का तो उन्होंने कहा था कि मैंने
टाइप बेचे हैं, मैंने प्लाट वगैरह किए हैं जो भी 200 कनाल, वो तो मान गया, उसमें उसने झूठ नहीं बोला।
हाँ लेकिन केस चल रहा है ना अभी, बॉस अभी कह नहीं सकते।
बेशर्मी की जो एक हद है कि इस कदर एक मुसलमान का गिर जाना कि एक तरफ मस्जिदें पड़ी हूँ किसी का नुकसान हो रहा हो और दूसरी तरफ आप जलसे करें या जलसों में जाएं, ऐसे लोगों पर खुदा की लानत होनी चाहिए।
सर सर अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, पता है क्यों हम एक देखें
किसी के घर में,
आई नो सर मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन देखिए मैं फिर आपको एक बात बताऊं, आप अगर ये कहते हैं ठीक है इमरान खान अभी जलसे जुलूस कर रहा है, नहीं देख रहा सलाब जिंदा, इस पर सब तनकीद कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन
सारी दुनिया भाई जान खुदा की कसम अजहार अफसोस कर रही है, ठीक है
आई नो, लेकिन
हमारे अपने भाई उठकर वहां पर नाच गाना कर रहे हो।
एग्जैक्टली मैं मानता हूँ, जी जी मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन सर दूसरी बात
इसकी 10 साल 3 साल ना कहे 4 साल ना कहे, पिछले 10 साल से ये हुकूमत कर रहा है अबरख पख्तूनख्वा में, और
पख्तूनख्वा में जी जी
ये रिजल्ट है। ये बंदा बोलता था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, आईटी स्पेशलिस्ट और पता नहीं क्या क्या स्पेशलिस्ट थे, वो उनमें निकला शेखर शेख, वाद चकू, बाबरवान और वगैरह वगैरह, ठीक है
सर। मेरे पास
हर बात को झूठ बोला, क्यों बोल
जी सर, मेरे पास और कॉलर भी हैं सर, आप शॉर्ट आगे बात करें। थैंक यू अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखें किसी के लिए भी ना बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सब हमारे अपने हैं, और मैं ज़रूर ये चाहूंगा कि अगर कोई भी इस तरह के बुरे अल्फाज यूज कर रहे तो मेरी कोशिश यही होगी कि ना करें, क्योंकि गलत है। हमें अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने, हमारे इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन हम किसी के लिए, और अगर इमरान खान साहब ऐसा कर रहे हैं तो आपका इख्तलाफ ज़रूर होगा लेकिन अल्फाज अच्छे इस्तेमाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब?
जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे, कौन बात कर रहे हैं सर?
जी मैं आफाक बात कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये सवाल था कि ये जो बहुत अच्छे माशाल्लाह काम कर रहे हैं PMLN PDM सारे ये लोग, इन्होंने अपनी जेबों से जो फ्लड फैक्ट्रीज थे अपनी पर्सनल अकाउंट से इन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की,
सर किसी ने भी नहीं दिया।
मांगा पांगी का काम तो बहुत अच्छा,
सर किसी ने भी नहीं दिए, सर किसी ने भी नहीं दिए, किसी ने भी नहीं दिए, इंक्लूडिंग इमरान खान किसी ने भी नहीं है, सब जमा कर करके दे रहे हैं।
अली खान की उसकी
जी जी जमा करके दे रहे हैं सर, आपने अपनी जेब से कहा है ना, अपनी जेब से किसी ने नहीं दिया,
अपनी जेब से क्यों नहीं उसे दिया, उसने नहीं सर, नहीं पार्टी के कितने लोग जिन्होंने दिए, आप उसके अली खान देखे
सब पार्टी के लोग हैं, आप सही कह रहे हैं, 5 अरब की बात की थी कि 5 अरब जमा हो गए लेकिन अभी तक वो ऑनेस्टी मिले भी नहीं है, सुन लीजिए ना,
दूसरे इन्होंने तो मुल्क और कौम का पैसा लूट के सारा बाहर बना लिए, सारे महल और आगे पीछे, ठीक है ना, ये सारा चोर और डाकुओं का एक टोला पूरे मुल्क की सारी पैसा लूट कर चले गए, और सारा मलबा आप जैसे लोग अभी इमरान खान के यहाँ पे डालने के लिए तुले हुए, इस तरह के येलो जर्नलिज्म, और यहाँ पे ये न्यूज हामिद मीर जैसे साफी जो इधर आ गया तो इस तरह का काम शुरू हो गया। आप लोग
चले सर, आपका अपना ओपिनियन है सर, आप कहिए जो आपको कहना है, हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे सर, हमारा अपना ओपिनियन है, जरूरी नहीं हम आपकी बातों पे,
किसी के बारे में भी इनफ नहीं रहा है मेहरबानी, इसलिए
सर आपने बड़ी सर आपने बड़ी अच्छी बातें बोली सर, आप सर बात वो है कि समझा भी कौन रहे, जो खुद स्टडी नेगेटिव टॉक से हुए सर, आप भी इख्तलाफ रखते हैं, रखे मैं मना नहीं कर रहा, आपका इख्तलाफ होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम
जी सर, नाम बताइए सर।
सईद बात कर रहा हूँ
जी। सईद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन, बाबर साहब बात कर रहे हैं
जी? आसिम बात कर रहा हूँ।
आसिम
जी सईद भाई,
हाँ जी, ओ बोलते हैं जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, तो उनको बोलो कि लाहौर में लाहौर के अंदर काम नहीं है, काम है सिंध के अंदर।
या एग्जैक्टली, बहुत सारा काम है सिंध के अंदर, ये लोग बोलते हैं हमने सब कुछ दे दिया, वहाँ लोगों के पास कुछ नहीं, बेचारों के पास, वो बोलते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला।
हाँ तो लोगों के आंखें खुलनी चाहिए भाई जान, लोगों के आंखों की
सर कैसे खुलेंगी, भुट्टो जिंदा है अभी
सर खुल जाएगी, इस मतलब खुल जाएगी।
चले आई होप सो आपकी बात सच हो, आंखें खुल जाए, लेकिन बड़ी अशद जरूरत है ऐसे हुक्मरानों को साइड करने का जो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ऐसे हुक्मरानों को साइड करने का जरूर होना चाहिए।
और देखो वो अभी भाई को मिलने के लिए वहाँ गया है,
जी नहीं, वो लंदन में जो गए हैं। अच्छा ये देखिए, पता है ये जो चीजें होती है ना, इससे थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, अंडरस्टैंड करें और समझने की कोशिश। वो भाई को मिलने नहीं गया था, वो गया था जो रसूमात हो रही हैं आखिरी, जो उनकी मलका एलिजाबेथ के लिए जो बुलाया गया था, 500 सरबरान को बुलाया गया था, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो वहां गए हैं, अब जब वहां गए हैं तो वो अपने भाई से मिलेंगे, उसके बाद वो न्यूयॉर्क भी जा रहे हैं। अब होता है क्या है, सोशल मीडिया पे चलता है, देखा अपने भाई से मिल, पता नहीं क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं भाई, मिलाने की बात कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं। कल को इमरान खान आ जाएंगे तो फिर वही प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसी बातें से थोड़ा सा इज्तनाब करें जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं सर?
सलीम नियाजी नियाग्रा फॉल से।
जी नियाजी साहब, कैसे हैं? कैसा मौसम चल रहा है नियाग्रा फॉल में सर?
जी मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारे जो सामईन हैं वो ये जो मसाइल आज हमारे वतन अजीज ने कहे हैं इनका कोई हल भी बताएं।
सर नहीं सर, लड़ेंगे यहाँ पे सब, हल कोई नहीं बताएगा।
जी और दूसरा, वो जो एतराज कर रहे थे तो उसमें मुझे ये जानना है कि ये अखलाक का कौन सा मयार है कि जो 50 रुपए के बॉन्ड पे जाके फिर वापस ना आना। दूसरों की बद अखलाकियां तो दिखाई देती हैं
जी, जी जी,
तो ये अखलाकी मयार का क्या पैमाना है?
बहुत बुरा है सर, बहुत बुरा है
जी,
बहुत बुरा है। थैंक यू सर, आपने सवाल रेज किया, मैं इसके बारे में जरूर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
शुक्रिया जी,
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि 50 रुपए के बॉन्ड पे नवाज शरीफ साहब गए और इलाज कराने के लिए गए और वापस नहीं आए। बिल्कुल आपने सही कहा, यह बहुत ही बुरी इखलाकियात की एक मिसाल है। लेकिन मेरा सवाल फिर आता है सर, जाने क्यों दिया? अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि जी यूं था चूं था, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट यह था, गवर्नमेंट इमरान खान की थी, यास्मीन राशिद साहिबा सारी चीजों को टेक केयर कर रही थी। अब जब जब मैं ये बात करता हूं तो कहते हैं जी सब इनकी फेक रिपोर्ट बनी, सब कुछ हुआ। तो देखें, जब गवर्नमेंट में आप होते हैं ना तो आपके पास वो अथॉरिटी होती है जहां आप, जरूरी नहीं है कि किसी ने फेक रिपोर्ट दी और आप उसको मन वन मान लें, बल्कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर किसी ने फेक रिपोर्ट दी है तो आप कोशिश करते हैं उसको और जगहों से भी कंफर्मेशन लेने की, और जब आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो आप फिर उसके बाद फैसला करते हैं। बहरहाल मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर एक अजीब सी डिबेट हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है कि आप 50 रुपए के बॉन्ड पे गए और ये कह के गए कि जी इलाज करा के वापस आएंगे और फिर आप वापस नहीं आए। ये बहुत ही बुरी हरकत और बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमारे पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत
जी? ठीक ठाक सर, नाम बताएंगे?
बड़ी इंटरेस्टिंग, दाऊद खान बोल रहा हूँ
जी। दाऊद भाई
बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा अपना शेयर कर लूं।
जी सर करें, आप बोल के लब आजाद हैं तेरे सर, बोलिए।
आज हमारे वजीर खजाना साहब जो है ना मुफ्ता इस्माइल,
जी जी जी,
वो जियो न्यूज पे एक इंटरव्यू दे रहे थे
जी, नया पाकिस्तान में देखा था मैंने सर।
अच्छा, उसमें वो कह रहे थे कि मैं बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ कि 8 पैसे जो है ना वो तेल की प्राइस कम हो जाएगी आज रात।
कितने? 8 पैसे?
8 पैसे?
मजाक कर रहे सर, बहुत बड़ा मजाक। अच्छा मैंने, वैसे आपको बताऊं अभी भी चल रहा है इंटरव्यू, मैंने ये नहीं देखा कि
नहीं।
अच्छा अच्छा सर, आप सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो बड़ा मजाक किया सर इन्होंने इसी बात पे सर। वो मरियम नवाज भी कह रही है ना, हम हुकूमत ठीक है हमारी है, लेकिन हम इसको इस बारे में नहीं कहेंगे कि कीमतें बढ़ाई है करें।
सारे ड्रामे कर रहे हैं जी
सर, यही चल रहा है सर पाकिस्तान में ड्रामे।
और दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि जर्मनी में जो बिजली का जो पर यूनिट प्राइस है ना वो 500 रुपए है, तो आप जर्मनी की जो है ना इनकम भी आप कर पाकिस्तान में।
एग्जैक्टली सर, जर्मनी की देखें, ये तो मैं तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट में भी पेट्रोल की प्राइस इधर उधर की बातें होती थी मैं बोलता था गलत है। क्यों? क्योंकि आप नहीं मैच कर सकते। अब आप टोरंटो कनाडा को ले लें सर, कनाडा में एक लो इनकम जो है, मतलब कम से कम भी $2,500 तो है ना मिनिमम, मैं आपको बताऊं तो $2,500-3,000 तो आदमी कमा ही लेता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर अगर वो अपने पेट्रोल जो है वो $1.50 लीटर है तो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आप देखें 0.01% पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आता है। पाकिस्तान के अंदर जब नौकरी आपकी मिलती ही $25,000 में है सर, तो उसमें $200-250 का पेट्रोल कैसे अफोर्ड होगा?
बिल्कुल नहीं, उसको तो छोड़े वो तो पेट्रोल के लिए क्या वो बसों में जाते हैं, तो बसों में वो प्राइस बढ़ गई है तो
सर डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, बसों के प्राइस एक्चुअली
तो
पता है
किराए भी बढ़ेंगे उसी तरह
सिस्टम मैं आपको बताऊं सर सिस्टम जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा ना कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इमरान खान साहब आए थे जब कीमतें कुछ और थी, उनके आने के बाद कीमतें बढ़ना शुरू हुई कुछ और हो गई, वो गए 6 महीने के अंदर कीमतें इनकी कुछ और हो गई, अब अगर दोबारा भी इमरान खान आएंगे तो भी आई एम श्योर मैं आपको बताऊं इतनी जल्दी ये चीजें खत्म नहीं होंगी बल्कि कीमतें और बढ़ेंगी ही।
सही बात है बिल्कुल,
क्योंकि सिस्टम नहीं है, सिस्टम खराब है ना, सिस्टम सही होगा ना तो कीमत
है नहीं, ये बात नहीं, हमारा सिस्टम है नहीं पाकिस्तान में,
सबसे तो पहले सिस्टम बनना चाहिए देन फिर कुछ होना चाहिए दाऊद साहब, क्योंकि सिस्टम ही नहीं बनाएंगे सिर्फ लड़ते रहेंगे पागलों की तरह तू आ मैं आ, अब क्या होगा। मैं तो कहता हूं अगर आज इमरान खान साहब आ भी जाएं ठीक है, उनके हामी कहते हैं आ जाए, मैं आपको सच बता रहा हूं मुल्क नहीं संभल सकता, बल्कि ये बेवकूफी होगी कि अगर अभी वो आएंगे, क्योंकि अभी आने का मतलब है मईशत ठीक नहीं है, फिर उनको वो गालियां पड़ेंगी जो अभी नून लीग को पड़ी हैं।
सही बात है बिल्कुल,
क्यों, क्योंकि देखिए ना नून लीग ने अपने इमरान खान का सारा मलबा अपने कंधे पे लिया, इमरान खान उनका मलबा अपने कंधे पे ले लेंगे तो फायदा क्या है।
बिल्कुल
मईशत को पहले मिलके मईशत को सेट करें, जहां लगे कि मईशत सेट हो जाए फिर फाइट करें, इमरान खान पॉपुलर लीडर
है। ना कि इन्होंने काबीना बनाई है 70 अरकान की, उसमें से 20 अरकान जो है ना वो बगैर जो है ना किसी
सर उसका रीजन है ना सर देखिए कोलिजन गवर्नमेंट सबको बांटेंगे ना, ये तो आपको पता है ना, ये यही है पाकिस्तान का बस।
उसमें 30 वजीर जो है ना वो सारे शिकस्त याफ्ता है, जिस तरह मुफ्ती इस्माइल इलेक्शन हार चुके हैं, अमीर मुखाम इलेक्शन हार चुके हैं, मैं किस का नाम बताऊं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
तो इधर जो है ना वो आज कल वो पीपल पार्टी का एक वो है वो डेस्मेल खान से वो पहले डिप्टी स्पीकर था पीपल पार्टी के, वक्त मैं नाम भूल गया, उसको भी वजीर लगा दिया
जी।
वो तो मेयर का इलेक्शन बीजेपी डेस्मेल खान में हार गया।
चले सर मेरे पास एक और कॉलर है, मैं आपसे फिर बात करता हूँ, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वास्सलाम सर, नाम बताएं सर।
महमूद वोरा भाईजान की हाल है, बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया जी, तुसी तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आज मैं अड्डी ऑन किया 770 मैं क्या देखा था प्रोग्राम लगा और बड़ी गल है जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम
सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोशिश करते हैं सर कुछ अच्छा कर लें पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए।
बुरा ही नहीं हो रहा, मैं बस पांच मिनट पहले ही ऑन किया, मैंने को पता नहीं मैं क्या सैटरडे भी शायद कोई होंगे प्रोग्राम,
नहीं सैटरडे 4 से 5 बजे होता है सर ये प्रोग्राम और ये पॉलिटिक्स भी होता है, हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, हम सब एक होने की कोशिश करें।
मैं गल कहानी अफोर्ड बिल्डिंग जी पाकिस्तान च नहीं हैगी, इतने बंदा जो 2500-3000 लेंदा गड्डी भाजी, हकीकत यह नहीं हैगी, जेड़ा आदमी सही टैक्स की जॉब कर रहा ना मिनीमम वेज जेड़ा लोगों को देंदे राइट, उसके टैक्स कट के ठोदा 2200-2000 मसी बनता राइट। अच्छा उसकी अपार्टमेंट का अगर रेंट लाओ ना, रेंट जरा कम से कम जो रेंट अजकल
1300-1400 मिल रहा है,
हाँ जी गारबेज इलाके जेडे
जी।
दूसरा उस तो बाद ग्रोसरी की प्राइस देख लो
जी जी,
हाँ जी इतने भी बंदे बड़ी स्ट्रेस के बच्चे है जेडे काम करते तीन फंड करते है, तिने ही काम करते ना फिर मसी उन्होंने गुजारा होंगे
सर, वो लिविंग स्टाइल है ना सर, आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ना यहाँ का लिविंग स्टाइल है, बट आप पाकिस्तान में देखे ना उसमें तो 25,000 रुपए तनख्वाह है सर,
और भाई जान उसे कमी कोई नहीं कर रहा, उसे लोग जेड़े है ना अगर दूसरा 5 घंटे के बाद काम करना 5-7 घंटे बड़ी खुशहाल जिंदगी है। मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया था, मैं 10 दिन मजदूर लभ कर रहा, मैं यार थोड़ा 1000 रुपया डेली दूंगा, 700 जी वो कैमी है नहीं उदा वेले फिरी जाते कपड़े पा के 3 टाइम रोटियां भी खाते, सानू इतने रोटी नसीब नहीं होती, चाहिए 12 घंटे
पाकिस्तान में एक और फायदा है ना, अपने घर रोटी नहीं होती तो पड़ोस में जाके खा लेंगे सर, है जरा रोटी का मसला नहीं है, इतने कोई नहीं देता, पड़ोसी भी नहीं देता इतने तो सर,
हर बंदा रोटी पासों खाता पर इतने टेंशन ना रोटी खाने वो भी नहीं भाजना,
यार ये बात तो मैं मानता हूँ सर, वहाँ असल में वो वाली बात है ना, याशी वाली लाइफ है सबकी ना, तो बस वो चल रहा है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया,
इंशाल्लाह सुनिया कर रहे हैं प्रोग्राम
सर, बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया,
ओके जी, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। یہ محمود بھائی تھے. محمود صاحب چلیں جی, ہم ایک دفعہ پھر اپنے اسپانسرز کے بارے میں دوبارہ بول دیں جی. امیڈیٹ ریسپانس سروسز سیکیورٹی آپ کی خدمت کے لیے ریڈی ہے, اور یہ سیکیورٹی فرم ہے, اور کمرشل ہو, کارپوریٹ سروس ہو, رہائشی سیکیورٹی, ڈسٹریبیوشن سینٹر ہو, ویئر ہاؤس ہو, ہاسپٹل ہو, کنسٹرکشن سائٹ ہو, آپ جب بھی امیڈیٹ ریسپانس سروسز کو کال کریں تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو سیکیورٹی یہ جو دے رہے ہیں آج کل, یہ ایک نئے طریقے سے جو آج کی ٹیکنالوجی اس کو بھی یوز کرتے ہیں, اور پھر اس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اور ان کا نمبر ہے 647-987-0002. اگر آپ کو جاب بھی چاہیے سیکیورٹی کی تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. آپ نے اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو یہ آپ کو لائسنس بھی دلوائیں گے, اور آپ کی ٹریننگ بھی آپ بک کروا سکتے ہیں. تو پھر میں کہوں گا آپ کال کیجیے 647-987-0002 www.irfi.ca. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیزا 786, یہ مارکھم میں ہے, بہترین زبردست پیزا ہے مارکھم کا, اور ان کے پاس بہت سارے فلیور ہیں, اور یہ صرف ابھی ان کا بٹر چکن پیزا میں نے کھایا, بہت مزے کا. ان کے پاس برگر بھی ہیں, پیزاز بھی ہیں, اور ونگز بھی ہیں, فرائز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ اگر مارکھم میں رہتے ہیں اور پیزا کھانے کا دل کرے تو صرف اور صرف نام یاد رکھیے, پیزا 786, کال کیجیے 905-554-7886. پیزا 786 کا نمبر دوبارہ میں دے رہا ہوں, 905-554-7886. اور تھون کلف میں ہے اجوا پیزا, یہ بھی بہترین حلال پیزا ہے, اور ایک بار کھائیں گے تو بار بار کھائیں گے. اجوا پیزا تھون کلف میں, اور یہ ہمارے دوست اجمل خلیلی صاحب ہیں جن کا یہ پیزا ہے. تو ان کا نمبر نوٹ کیجیے اجوا پیزا کا تھون کلف میں, 416-423-2792. دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اجوا پیزا تھون کلف, 416-423-2792. کالر ہمارے پاس موجود ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
السلام علیکم
جی. وعلیکم السلام, نام بتائیں گے سر؟
سر میرا نام ریحان صدیقی ہے.
جی ریحان صدیقی بھائی, کیسے ہیں آپ؟
ابھی صاحب انیم صاحب نے صحیح بولا کہ وہاں پہ لوگ کام ہی نہیں کرتے.
جی بالکل,
چمتکار چاہیے,
شارٹ کٹ
صبح. ہاں شارٹ کٹ, صبح اٹھوں تو فرسٹ کلاس میرے اکاؤنٹ میں 4,00,000,000 ہوں, اور وہ لگا ہوا کلف لگا ہوا شلوار قمیض پہن کے میں چودھری بن کے پھرتا رہا ہوں.
ایگزیکٹلی سر, بالکل صحیح بات.
دوسرا وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہاں پہ ہے آپ کو آنےسٹ لوگ نہیں مل رہے. آنےسٹ کہاں سے, پوری قوم کو تو بنایا ہوا ہے کرپٹ. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ فوج, پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہے. بھیا صحیح بات ہے کہ فوج کا ہی عمل دخل ہے. سارا مسئلہ جو ہے اور فوج ہے اور باقی بیوروکریسی ہے. اتنا پیسہ 70 سال سے, آپ یہ بتائیں کہ کوئی کام کیوں نہیں ہو سکا؟ مطلب وہ پیسے گئے کہاں, وہ کس نے خرچ کرے؟
سر آپ بولیں گے اس کے بعد جواب دوں گا, پہلے آپ بول لیجیے. سارا
اچھے تو ہے نا, وہ کس کے پاس گئے؟ کیوں نہیں 70 سال سے ڈیم بنے, کیوں نہیں روڈے میں انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہوا, کیوں نہیں ہر جگہ تو حالات خراب ہیں, تو سارے کرپشن ہیں. اب وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے لیے آپ ہر جگہ تو جو کرپٹ لوگ ہیں اسی کو ہی چوکیدار بنا دیتے ہو, تو پھر کرپشن کرپٹ کہاں سے پکڑا جائے گا؟
ٹھیک ہے سر,
ٹھیک ہے. اب آپ سر آپ پروگرام دیکھتے ہیں
جی, دیکھتے
ہر آدمی کو لے کر آتا ہے نا, پکڑ کے لے کر آتا ہے, کیا بنا؟
کچھ بھی نہیں, وہ چھوٹ جاتے ہیں.
تو آپ کہاں سے لے کر آؤ گے ایماندار لوگ؟
سر ایماندار سے زیادہ نا, اب آپ نے بولا نا, میں آپ کو تھوڑی سی تصحیح کروں اگر آپ برا نہ مانے تو.
نہیں
کیونکہ اختلاف آپ کا اپنی جگہ ہے, بالکل صحیح. جیسے آپ نے کہا فوج کی بات کی, سر آپ صرف اٹھا کے دیکھیے, جب جب فوج کا دور رہا پاکستان کے اندر, مشرف سے لے کے, ضیا سے لے کے, ایوب خان سے لے کے, آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں, صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ماشاء اللہ لگنا چاہیے, صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جب جب فوج کا دور رہا ہر چیز بڑی ستھری ہونا شروع ہو گئی, روڈیں بھی بن گئیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے پاس اویئرنیس بھی آنا شروع ہوئی, پیسے بھی آئے, بزنس بھی گرو کر گیا, سب کچھ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ سسٹمیٹک, ایک ہمارے پاس ادارہ ہے جو سسٹمیٹک چلتا ہے, جن کے پاس سسٹم ہے. اگر اس کے سپریم کمانڈر نے کہا کہ جا کے آگے لڑ لو تو وہ یہی سوچے گا کہ مر جاؤں گا, جا کے لڑ لے گا. یہ ایک ہے سسٹم. یہ سسٹم کی کمی ہے ہمارے پولیٹیشینز میں, یہ سسٹم کی کمی ہے ہمارے. جب ایک شخص, کوئی بھی پولیٹیشین, दस करोड़ रुपए देके या 15 करोड़ रुपए देता है, इलेक्शन में खर्च करता है। सुन लीजिए सर, बात तो सुने पूरी सर, पहले मेरी बात। 10-15 करोड़ रुपए देता है और वो इलेक्शन जीत के आता है तो सर सबसे पहले तो 15 करोड़ रुपए निकालेगा और उसका प्रॉफिट भी निकालेगा जो उसने लोगों से लिए, तो 20-25 करोड़ तो वो निकालेगा सर। तो कहां से निकालेगा? वो रोडों के कॉन्ट्रैक्ट से निकालेगा, वो लोगों के चंदों से निकालेगा, वो सब चीजें यहीं से निकलती सर। वो इसको कॉन्ट्रैक्ट देगा तो बोलेगा ठीक है डामर कम डाल दिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा बोलेगा ठीक है मटेरियल कम। सर सिस्टम, आप कनाडा में, मैं कनाडा में हूँ, यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ रेफरल सिस्टम को उन्होंने जायज करार दे दिया, बिल्कुल अच्छा किया। हम तो कहते हैं पाकिस्तान में भी रेफरल सिस्टम जायज करार दिया जाए ताकि लोग जो है अपनी ड्यूटियां करें, उन्हें पता चले कि हमें यहाँ से पैसे मिलेंगे रेफरल पे। तो एक्चुअली सिस्टम नहीं है सर पाकिस्तान में, सिस्टम जिस दिन बन गया ना उस दिन सर अभी पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, क्यों? सिस्टम।
सर मैंने आपकी बात मान ली,
बस सर सिस्टम है जी।
चीज आपने बोला फौज में सिस्टम है, फौज इतना, आपने जो भी टाइम पीरियड बताया अयूब खान का, जियाउलक का, मुशर्रफ का, कि भाई ये सिस्टम आप क्यों नहीं सिविल में क्यों नहीं डेवलप किया आपने?
सर देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई एम सॉरी बुरा नहीं माने, ये मुशर्रफ साहब का जब दौर आया ना, सबने कोशिश की कि हम पॉलिटिशियन को साथ लेके चलें और उनको ऐसे लेके चलें, क्योंकि आते इख्तदार में जब भी आर्मी आती है तो वो फिर आने के बाद ना वो बन जाती है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं आमरियत नहीं है, मार्शल ला नहीं है, बल्कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके और उसके साथ हम शामिल होकर अपनी हुकूमत चला रहे हैं ताकि पूरी दुनिया इनको बुरा ना कहे। जब मुशर्रफ साहब थे, जब एक सिस्टम बना था, क्या बना था? एमकेएम ने कराची को बनाया था, ये आपके सामने की बात है जो मुस्तफा कमाल ने किया। पंजाब बना था, चौधरी परवेज इलाही साहब थे, पंजाब बन रहा था, मुनिस इलाही साहब से पैसा लग रहा था। सुन लीजिए सर, जैसे वो गए, नहीं सर रोडों की बात नहीं कर रहा मैं, रोडों की नहीं, ओवरऑल देखें आपका बिजनेस डेवलप हो रहा था। जितना अच्छा टाइम मुशर्रफ का मैंने अपनी लाइफ में देखा ना, मैंने किसी का नहीं देखा, ऑनेस्टली बताऊं। और मेरे अब्बा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहते थे जियाउल्लाह का टाइम बहुत अच्छा था, इन पॉलिटिशियन से बेहतर जो ना ये गवर्नमेंट थी कि जियाउल्लाह ने कम से कम रोटी दी थी सबको।
सर मैं मानता हूँ मुशर्रफ का टाइम अच्छा था, लेकिन मुशर्रफ के भी अल्फाज आपको याद है कि
पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज,
नहीं उसका ये भी अल्फाज थे ना, सही आदमी लाऊं कहां से।
हाँ सर सही, सर मेरे पास एक और कॉलर है, मेरे पास टाइम भी बड़ा शॉर्ट हो गया, मैं आपसे माजर चाहूंगा, मैं आपकी कॉल ड्रॉप कर दूं अगर आप बुरा ना।
लास्ट टाइम भी हमने ऐसी
सर आप आखिर में आते हैं ना, आप पहले क्यों नहीं आते? 4 बजे मैं बोलता हूँ मेरा प्रोग्राम शुरू होता है, देखिए सिर्फ 8 मिनट रह गए, एक और कॉलर मेरे साथ है।
चलो ठीक है, ओके,
थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है
जी? ठीक ठाक सर, नाम बताएंगे?
मेरा नाम मोहम्मद है
जी। मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं,
बस अल्लाह का शुक्र है। फसला मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जब जब ये डिक्टेटरशिप रही है, अल्लाह के हालात अच्छे हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन एक बात आपने गौर की कि इसका बैकग्राउंड कब कब डिक्टेटरशिप आई है और किन हालात में आई है। जियाउल्लाह का तो सोवियत यूनियन वहाँ पे था
जी, जी, जी।
अमेरिका को जरूरत थी, उन्होंने बेतहाशा डॉलर दिए, और जब डिक्टेटरशिप होती है तो उसमें कुछ लोग होते हैं खाने वाले
जी,
खाते सारे हैं, ये आप नहीं कह सकते ही नहीं खाते
जी, जी सभी खाते हैं,
टास्क होता है कि लगाने का, लेकिन उसमें ये आप ये भी देखें ना पैसा कितना आता है, बेब्रेक पैसा आता है, क्योंकि उस वक्त उनको मतलब होता है ना आपको लोअर दो ना, चलो वो गुजर गया। उसके बाद जब मुशर्रफ आए तो क्या सूरत हाल थी? 9/11
हुआ था,
ठीक है ना, पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान कूद गया उस जंग के अंदर, डॉलर की ले लग गई, तो ये उनका कमाल नहीं है
सर,
कमाल नहीं था
सर,
उन्होंने इतना खर्चा किया, मुल्क को बनाया, आवाम को, भाई पैसा आ रहा है ना बेताशा
सर, आपसे
कोई पूछने वाला नहीं है, लूटने वाले कम है
सर,
वो जमहूरियत में ज्यादा लूटने वाले होते हैं।
मोहम्मद भाई हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जमहूरियत में ज्यादा लूटने वाले होते हैं। असल में जब आपको पता है मुशर्रफ साहब आए थे वो 98 में आए थे, ठीक है, और जो जंग शुरू हुई थी वो 3 साल बाद शुरू हुई थी।
हाँ तो 98 पे से लेकर 9/11 तक आप उनका उठा के देखो, कितने पुल बनाए, कितने ब्रिज बनाए उन्होंने,
मैं वही आपको बताना चाहूँ,
ये भी तो देखे
सर, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ सर। 99 में उन्होंने ये बात की कि रेफरेंडम करा के मैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंडम कराया 99 में, और 99 से 2000 के दरमियान उन्होंने जो है एमक्यूएम को शामिल करके और मुस्तफा कमाल साहब ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, मैं आपको फिगर वो बता रहा हूँ जो है, ठीक है। 9/11 आए थे सर, 2001 में 9/11 जो हुआ था वो हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जब 9/11 हुआ तो उसके बाद से प्रेशर इतना था, दो बातें थी, या तो हम पे भी हमला हो जाए या हमें साथ चले जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुशरफ साहब ने अकलमंदी की, आप सही कह रहे हैं, पैसा बहुत आया था उस वक्त, IMF भी चला गया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वो जो पैसा आया सर उस जंग का, वो इस्तेमाल तो सही जगह हुआ ना, मेरा मकसद ये।
लेकिन आप देख लेना क्या सही जगह पे इस्तेमाल हुआ, आप खुद एक तरफ बात करते हैं कि सिस्टम नहीं है,
IMF चला गया,
बना देते ना यार
सर, सिस्टम बनाना, देखें सिस्टम बनाना,
सिस्टम बनाते हैं, सिस्टमाइज करते हैं एवरीथिंग को, लोगों को इस काबिल करते हैं,
कोशिश।
आप ये जो लोग कहते हैं ना कि सड़कें पुल बनाना
सिस्टम नहीं,
हमसे गरीब मुल्क देख लो उनकी सड़कें अच्छी है।
हाँ सर मेरे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया, 3 मिनट रह गया, माजरत के साथ सर आप लेट आए, आप 4 बजे आया करें सर, बड़ा मजा आता
है। नहीं मैं सुन रहा होता हूँ, लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि फौज का जब भी रहे कम से कम आम आदमी तो सही रहा है,
आम आदमी सही रहा है, ठीक है सर,
लेकिन उनको ये बात कहना कि वो उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया, ये जाती होगी वैसे ही,
ठीक है सर, ठीक है, आप
लोगों से
थैंक यू मां जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास एक और कॉलर है, सिर्फ आप सर, अस्सलाम वालेकुम सर।
हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी, नाम बताएंगे सर?
जी आमिर बात कर रहा हूँ।
जी आमिर भाई मेरे पास टाइम कम है, 1 मिनट में बोलिए जो आपको बोलना है, बोल के लब आजाद है तेरे, बोले सर।
चलो ठीक है मैं बोलता हूँ, कोशिश करूंगा, 1 मिनट में समो सकूँ बात को। जब हम ये बात करते हैं
जी सर,
जब हम ये बात करते हैं कि वो मुशरफ सही था या वो सही था, तो हम बेसिकली गुफ्तगू को आगाज ही गलत तरीके से कर देते हैं।
जी जी।
जब हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मीन रिपब्लिक है, तो हमारा बहस का जो मंबा और महवर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वहाँ आईन की पासदारी और डेमोक्रेटिक सिस्टम और उसके तहत मुंतखब होने वाले लोग, वो उन्होंने क्या किया है, और वो उन्होंने अगर नहीं किया तो उसकी वजूहत क्या थी।
बिल्कुल,
वो जो डिक्टेटरशिप जितनी भी आई, वो अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो वो उसके फिर वजूहत, मैं पिछले कॉलर से उससे मुत्तफिक हूँ काफी हद तक, लेकिन वो ठीक है कि वो आते हैं उनको पैसे भी बहुत मिले, लेकिन उसमें एक और बड़ा एलिमेंट ये है कि सस्टेनेबिलिटी, आप 10-10 साल के लिए वो रह जाते हैं।
जी जी।
आपने आज तक किसी सिविलियन गवर्नमेंट को 10 साल चलने दिया?
ज्यादा नहीं सर।
अच्छा थोड़ी सी मैं वक्त लूंगा तो थोड़ा
नहीं, नहीं सर बिल्कुल 1 मिनट रह गया सर मेरे पास, सॉरी।
आप इसकी जिंदा मिसाल ले लें, 2008 से लेकर 2018 तक
सर, मैं कट कर रहा हूँ आपकी लाइन, सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप नेक्स्ट वीक ना बिल्कुल 4 बजे 4:15 बजे आ जाए सर, मैं आपको आधा घंटा दूंगा, ठीक है, सॉरी माजरा चाहता हूँ आज के लिए, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, सॉरी जी हमारे प्रोग्राम का टाइम, आई एम सॉरी सर, हमारे टाइम जो खत्म हो गया। सिर्फ हम 2 अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं, एक है पिज्जा 786 जो मार्कम में अच्छा बेहतरीन पिज्जा है और हलाल पिज्जा है, तो अगर आप पिज्जा खाना चाहते हैं और आप मार्कम में हैं तो अभी आप कॉल कर सकते हैं 9055547886। और अजवा पिज्जा जो थॉर्नक्लिफ में है, हलाल मजेदार पिज्जा, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे, और ये इनका नंबर है अजवा पिज्जा का 4164232792, और ये हमारे दोस्त हैं अजमल खलीली साहब, उनके पिज्जा सेंटर हैं, तो आप जाइए जाके खाइए और बताइए कि आपने हमारे प्रोग्राम में सुना था। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए, हम फिर अगले हफ्ते आएंगे, और फिर मैं कहूंगा कि इख्तलाफ जरूरी है, लेकिन हाँ अगले हफ्ते भी हम डिबेट करेंगे, इसी तरह बात करेंगे, लोगों का बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को अवेयरनेस है, लोग समझते हैं, तो अगले हफ्ते फिर हम रिव्यू करेंगे पूरे हफ्ते की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान पॉलिटिक्स का। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
The most glorious. The most exciting. The most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorships, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
UK, Switzerland, ate Italy to baad. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਪਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437-423-2669 ਜਾਂ 437-423-2666।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
S&S ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।